HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
दिल्ली वाले नाइट कर्फ्यू के तुरंत बाद ई पास के लिए 73,000 आवेदन, 1,271 को मंजूरी। दिल्ली में मंगलवार को रात्रि कर्फ्यू लागू होने के तुरंत बाद ई पास के लिए 73,154 आवेदन आए। इनमें से केवल 1,271 को मंजूरी दी गई थी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि 34,759 से अधिक आवेदन खारिज कर दिए गए, क्योंकि आवेदक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के आदेश के अनुसार छूट वाली श्रेणियों में नहीं थे। नई दिल्ली जिले में सबसे अधिक 13,139 आवेदन प्राप्त हुए, इसके बाद दक्षिण पश्चिम में 11,661, दक्षिण में 9,947, पश्चिम में 7,673, उत्तर पश्चिम में 6,560 और पूर्वी दिल्ली में 6,065 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं ई पास आवेदन में गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ई पास को लेकर कुछ शिकायत मिली थी जिसे दूर कर लिया गया है। पहली लहर से भी अधिक कहर बरपा रहा कोरोना, पहली बार 1.26 लाख नए केस। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर काफी विकराल होता दिख रहा है। बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस के मामलों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और सबसे अधिक 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। महामारी की शुरुआत से ही अब तक ऐसा पहली बार है जब एक दिन में 1,26,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को जहां 1,15,000 से अधिक केस सामने आए थे, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा करीब 1,26,000 से अधिक हो गया। कोरोना के बढ़ते इस कहर को देखते हुए अब पाबंदियां लौट आई हैं। कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया। वहीं पंजाब सरकार ने राज्यव्यापी नाइट कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। यहां तक कि बेंगलुरु ने भी शहर में स्विमिंग पूल और जिम सेंटरों को बैन कर दिया है। इसके अलावा आज यानी गुरुवार से यूपी की राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अनिल देशमुख की याचिका पर SC में सुनवाई आज, HC के फैसले को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट आज यानी गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली कराने के आरोप के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई मुकदमा मामला सूची के मुताबिक दोनों याचिकाएं बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष आएगी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बंगाल BJP अध्यक्ष बोले, बम बंदूक के साथ मुझ पर तालिबान जैसा हमला। भारतीय जनता पार्टी BJP की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस TMC के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर बम एवं ईंटों से हमला किया। सत्तारूढ़ पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। घोष ने कहा कि शीतलकुची में BJP की बैठक के बाद उनकी कार पर हमला किया गया, जिसमें उनकी कार की खिड़कियों के शीशे टूट गए। कार में जिस तरफ वह बैठे थे, उधर की खिड़की का शीशा भी टूटा गया, जिसके बाद उन्हें एक ईंट भी आकर लगी। घोष ने वीडियो संदेश में कहा, अगर यह स्थिति है तो कोई कैसे कूच बिहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की उम्मीद कर सकता है, जहां लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बदलाव के पक्ष में मतदान किया था। कूच बिहार जिले में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 अप्रैल को मतदान होना है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में कूच बिहार समेत उत्तर बंगाल में 7 सीटें जीती थी। आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली से लौट रहे तृणमूल कार्यकर्ता घोष की बैठक में शामिल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से उलझ गए थे। चेक बाउंस मामले में अभिनेता शरद कुमार और उनकी पत्नी को 1 साल की सजा। अभिनेता नेता आर शरद कुमार और उनकी पत्नी राधिका और एक अन्य व्यक्ति को चेक बाउंस के मामले में बुधवार को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने आरोपी द्वारा अपील दायर करने के बाद 30 दिनों के लिए इसे स्थगित करने कहा है। दोनों नेता हैं, जबकि राजनीतिक दल ऑल इंडिया समाथुव मक्कल काची के अध्यक्ष कुमार पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी हैं। फिल्मों के लिए निधि देने वाली कंपनी रेडियंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक मैजिक फ्रेम्स कंपनी ने 1.50 करोड़ रुपए लिए थे। इस कंपनी में कुमार, राधिका और लिस्टन स्टीवन साझेदार हैं। बाद में कुमार ने कंपनी से 50 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिसके बदले में उन्होंने चेक जारी किया। जब चेक लगाए गए तो सभी चेक बाउंस हो गए। कंपनी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।